नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्रों में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौवन शोषण सामग्री, डी फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। चीन ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी आर्थिक कदमों की घोषणा की, जिसमें अमेरिका को ड्रोन निर्यात पर नियंत्रण भी शामिल। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौमे इस्तेहाद साल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा झूठ फैलाने के ये हताश प्रयास केवल मानवाधिकारों के अपने दयनीय रिकॉर्ड और आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में उसकी स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन का साक्षी है। बलोच वॉयस एसोसिएशन बीवीए ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र से पहले एक रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकारों की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया है। 17 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान का संघर्ष राजनीतिक प्रकृति का है और लंबे समय से कथित उपेक्षा, आर्थिक शोषण और मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण वहां असंतोष बढ़ा है। रिपोर्ट में जबरन लोगों को गायब किए जाने, न्यायेतर हत्याओं, नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक और असहमति की आवाज दबाने के आरोप लगाए गए हैं। इसमें पाकिस्तान के जबरन गुमशुदगी मामलों की जांच आयोग और मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टों का भी हवाला दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज श्रीलंका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर दृष्टिकोण के अंतर्गत श्रीलंका के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। विदेश सचिव के रूप में श्रीलंका की ये उनकी पहली यात्रा थी। विदेश सचिव ने इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, प्रधानमंत्री डॉ हरणी अमरासुरिया और विदेश मंत्री विजयथा हेरात से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मामलों, विदेश रोजगार और पर्यटन सचिव अरुणी रणराजा से भी बातचीत की। विदेश सचिव ने विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा से भी मुलाकात की तथा श्रीलंकाई तमिल और भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय मुद्दों और परियोजनाओं के संबंध में चल रहे सहयोग की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने चक्रवात दितवाह के बाद घोषित 45 करोड़ डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज सहित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने रेलवे परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ डॉलर तथा पशुधन और अन्य प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं के लिए 10 करोड़ डॉलर के भारतीय रुपए में दिए जाने वाले 2 ऋणों के संबंध में हुए समझौते का स्वागत किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति की उपस्थिति में श्रीलंका सरकार के वित्त सचिव और भारत के उच्चायुक्त ने भारतीय निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के बीच हुए समझौते का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने विद्युत ग्रिडों को आपस में जोड़ने की परियोजना, संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना और त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने सहित ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के तौर तरीके पर भी चर्चा किया। उन्होंने श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निविदा प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से आदित्य प्रताप से।
मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौवन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। उन्होंने इस पर क्षमा मांगी है और अपनी गलती पर खेद व्यक्त किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन ने अमेरिका की ओर से हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के उत्तर में उसके विरुद्ध कई आर्थिक कदम उठाने की घोषणा की है, जिनमें ड्रोन के निर्यात पर नियंत्रण और 6 अमेरिकी संस्थाओं पर पाबंदियां शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि ये कदम चीनी ड्रोन के आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध और 43 चीनी कंपनियों को उइघुर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम से संबंधित सूची में शामिल करने के बाद किए गए हैं। मंत्रालय ने अमेरिका से अपने प्रतिबंध को वापस लेने का आग्रह किया और चेतावनी दी है कि यदि नए प्रतिबंध लगाए गए तो चीन और भी कार्रवाई कर सकता है। चीन की ओर से प्रतिबंधित 6 अमेरिकी संस्थाओं में अप्लाइड डीएनए साइंसेज और गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स इन चाइना शामिल है। उन पर चीन में व्यापार या अन्य गतिविधियों में भाग लेने से रोक लगा दी गई है। ये घोषणा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की सितंबर में अमेरिका की संभावित यात्रा से पहले की गई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने के लिए अमरीका और ईरान के बीच जारी बातचीत में प्रगति की घोषणा के बाद तेल की कीमतें 3 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान कम होने की संभावना बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल लगभग 5% गिरकर $80 प्रति बैरल से नीचे आ गया है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 5% से अधिक गिरकर लगभग $76 प्रति बैरल पर आ गया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ओमान से संबंधित बातचीत में प्रगति हुई है। श्री बेसेंट ने कहा कि समझौता शीघ्र हो सकता है। दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि इस वर्ष मई के मध्य से जब सरकार ने भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों की निगरानी प्रणाली शुरू की थी, तब से भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों के कारण 2,400 से अधिक लोग आपातकालीन कक्षों में भर्ती हुए हैं। देश की रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी के अनुसार इस वर्ष भीषण गर्मी से होने वाली बीमारियों से मरने वालों की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की यात्रा पर पहुंचे, जहां इबोला का प्रकोप चिंताजनक रूप से फैल रहा है। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से वेतन न मिलने पर की गई हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न हुई है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालीहा और श्री यांशी वल्ली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर और मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल योषण शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। चीन ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी आर्थिक कदमों की घोषणा की, जिसमें अमेरिका को ड्रोन निर्यात पर नियंत्रण भी शामिल है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।